हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद आठवें अध्याय के 18वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। क एष यो सावहम् अब्ज पृष्ठा एतत् कुदो वाब्जमनन्यतप्सु अस्ति हि अधस्ता इह किञ्चनेतद् अधिष्ठितं यत्र सतानु भाव्यम्। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, आप मेरे पीछे दोहराइए। कह कौन एषः यह यह असो अहम् जो मैं हूँ अब्ज पृष्ठे कमल के ऊपर एतद् यह कुतः कहाँ से वा अथवा अब्जम कमल का फूल अनन्य अन्यथा अप्सु जल में अस्ति है ही निश्चय ही अधस्तात नीचे से इह इसमें किंचन कुछ भी एतद् यह अधिष्ठितम स्थित यत्र जिसमें सता स्वतः नु या नहीं भाव्यम होना चाहिए। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। प्रारंभ में विराट जगत की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसे का तैसा बना हुआ है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है और इस तरह से वह परम कारण को खोजने का यत्न करता है। यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्य वे सफलता का श्रेय प्राप्त होगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो यहाँ पर चर्चा हो रही है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से अनेक प्रश्न पूछे और मैत्रेय जी उनको परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैत्रेय जी ने आप देखेंगे एक बार भी नहीं कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा है। सो जो विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि कैसे प्रकट हुई, कैसे इसका अस्तित्व आया, तो मैत्रेय जी बता रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आप कुरु वंश के श्रेष्ठ हो आप, और आपने जो प्रश्न पूछे हैं सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हैं और इन प्रश्नों से आपके जो कुल का यश और भी बढ़ेगा। सो मैत्रेय जी ने बोला कि जो प्रश्न आपने पूछे हैं यही प्रश्न ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं चार कुमार, उनमें से जो सबसे बड़े हैं सनत कुमार, उन्होंने पाताल लोक से नीचे जाकर जो है भगवान शंकरषण से ये प्रश्न पूछे थे और भगवान शंकरषण ने उनको इन प्रश्नों के उत्तर दिए और प्रत्युत्तर में सनत कुमार जी ने यह ज्ञान सांख्यायन ऋषि को प्रदान किया और सांख्यायन ऋषि ने यह ज्ञान जो है वो पराशर जो है ऋषि जो कि व्यास देव के पिता हैं उनको प्रदान किया और व्यास देव से जो पराशर ऋषि से जो है ये ज्ञान मैत्रेय मुनि को प्राप्त हुआ। तो मैत्रेय जो है मुनि वो यही ज्ञान यथारूप विदुर जी को प्रदान कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रमाणिक ज्ञान है, एक श्रृंखला से आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो उसको अचानक प्रकाश दिखाई दिया, सब कुछ उसको ज्ञात हो गया और उसने जाके ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ऐसे लोगों को बोलते थे अपस्टार्ट, कि कुछ भी उनकी पृष्ठभूमि नहीं है, कोई आधार नहीं है, अपने आप आए और एक नया सिद्धांत शुरू कर दिया। नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रसिद्ध होना चाहता है और अपना एक नवीन विचार प्रस्तुत ना करे। अगर दूसरों की बात ही दोहराएगा तो उसकी बात को कौन मानेगा, उसको कौन समझदार बोलेगा। व्यक्ति जो जनसाधारण है ऐसे व्यक्ति को ही श्रेय देते हैं जो कि कोई नया विचार लेके आता है। लेकिन हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इसके बिल्कुल विपरीत है। आध्यात्मिक जगत में वही व्यक्ति प्रसिद्ध है जो प्रमाणिक जो परंपरा है उससे प्राप्त ज्ञान को यथारूप प्रदान करता है, अपना मत उसमें नहीं डालता, जैसा उसको अनुभव हुआ जैसा उसने समझा वैसा वो ज्ञान को आगे परंपरा में उसको हस्तांतरित करता है और वो ये मानता है कि उसका इसमें कुछ भी जो है श्रेय नहीं है, जो भी श्रेय है उनके गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों का है। सो इस श्लोक में ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन आया है कि गर्भोदक्षाय विष्णु जो है 4000 चतुर्युग तक जो है ब्रह्मांड में निष्क्रिय अवस्था में योग समाधि में जो है वो आराम कर रहे थे। हाँ, सो एक चतुर्युग 48,20,000 साल का होता है, तो आप सोचिए कि 4000 चतुर्युग कितना समय जो है गर्भोदक्षाय विष्णु विश्राम कर रहे थे और उनके विश्राम करते समय जितने भी जीव थे उनके शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए थे। तो जो लोग भगवान के शरीर में विलीन होने के लिए अनेक तपस्याएं करते हैं उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो निरंतर भोग में भी लगे रहें तो प्रलय के समय ऐसा समय आएगा, ऐसा स्थिति बनेगी कि उन्हें अवश्य मजबूर होकर उन्हें भगवान के शरीर में प्रवेश होना पड़ेगा और करोड़ों अरबों वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में रहना ही पड़ेगा। तो जब भोग करते हुए हर एक जीव भगवान के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर सकता है, तो फिर अलग से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो अव्यक्त हाँ आसक्त चेतसा, कि जो लोग अव्यक्त से आसक्त हैं मूर्ख हैं, हाँ दुखों से भरा रास्ता अपना रहे हैं, अगर नहीं भी कुछ करेंगे, अगर मुक्ति की आकांक्षा नहीं भी की, इच्छा नहीं भी की, तो भी भगवान के शरीर में तो जाना ही है। हाँ, और भागवतम में कहा है कि जो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति इस प्रकार प्राप्त कर भी लेते हैं, जो भगवान के जो है ज्योति में विलीन हो भी जाते हैं, ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में उनका अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से गिर जाते हैं और वापस भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, अनेक मायावादी सन्यासी वो हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि खुलवाते हैं और परोपकार के कार्यों में लगते हैं, तो प्रभुपाद के अनुसार ये उनका फॉल डाउन है, पतन है उनका, कि वो भ्रम जो सुख है उसको छोड़कर लोगों के जो है शरीर के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जो इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासियों का यही हाल होता है। हाँ, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो ये शारीरिक स्तर के परोपकार हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से लोग लंगर लगाते हैं और दुनिया भर के प्रपंच करते हैं, स्कूल खुलाते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ये सब जो कार्य, अरे आप माला करेंगे, आप माला करेंगे, आप माला जब भी करें तो बहुत एकाग्र होकर करना चाहिए, है ना। हाँ अच्छा, ओके ठीक है, थैंक यू। सो आई डोंट नो क्या हम कह रहे थे। हाँ, सो शारीरिक जो स्तर पे जो लोगों के शरीर का ध्यान रखने के प्रति जिनकी चिंता उसमें लगी हुई है बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है। अब हम अगर इस श्लोक की बात करें तो ब्रह्मा जी जो है 48,20,000 गुना 4,000 जो है वर्षों के बाद, जो भगवान ने जब सृष्टि करने का समय आया तो भगवान के नाभि से कमल उगा, और जो कमल है वो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कमल है वो सकाम कर्म का प्रतीक है, है ना। आप सबने पढ़ा है इसको, हाँ, जो कमल है सकाम कर्म का प्रतीक है, और उस पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है क्योंकि उनका कुछ भी भौतिक कारण नहीं है, जो ब्रह्मा जी हैं वो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के शरीर से नाभि से प्रकट हुए हैं। यहाँ से हम ये भी जान सकते हैं कि भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाँ, यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमन्ति, हम लोग जब दर्शनार्थी करते हैं तो ब्रह्मा जी का हमें श्लोक दोहराते हैं ब्रह्म संहिता से, कि भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, भगवान आँखों से खा सकते हैं, आँखों से सृष्टि कर सकते हैं, भगवान किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। सो जब ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पे जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने चारों ओर देखा, हाँ वो चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये कमल का फूल कहाँ से आया। हाँ, तो वो मनन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मनन कर रहे हैं कि ये कमल का फूल है, इसकी नाल जो है पानी में जा रही है, तो अवश्य इसका स्रोत जो है पानी के अंदर होगा। क्या ये गलत तर्क है? इस तर्क में कुछ भी खराबी नहीं है, है ना, बिल्कुल सही तर्क सोच रहे हैं कि जरूर नीचे कुछ ऐसी वस्तु है जिससे ये कमल का फूल जो है खिला है। हाँ, सो आप आगे के श्लोकों में देखोगे कि ब्रह्मा जी ने वो पानी में डुबकी भी लगाई है और ढूंढा, लेकिन उनको उसका स्रोत मिल नहीं पाया। तो वापस जब उनका मन घबराना शुरू हो गया तो वापस तैर के बाहर आए, और जो वो फूल था लोटस फ्लावर कमल का फूल वापस आके बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। सो प्रभुपाद जो हैं वो बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं, है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, है ना। प्रभुपाद अनेक जगहों पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। आरोह पंथ है कि हम अपनी इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करें कि अभी उजाला है, रात को अंधेरा हो जाता है, हाँ जो आग है गर्म होती है, छू के देखेंगे उसको नहीं। सो जो हम अपने इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं उसको इंद्रिय जनित ज्ञान बोला जाता है, हाँ उसको जो संस्कृत में उसको बोला जाता है आरोह ज्ञान, कि आपने धीरे धीरे ज्ञान लिया और ऊपर बढ़े आप, है ना। और दूसरा जो प्रक्रिया है वो अवरोह प्रक्रिया है। अवरोह प्रक्रिया मतलब आपको ऊपर एक कोई प्रामाणिक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने कोई अध्यापक है, कोई गुरु है, उसने वो ज्ञान प्रदान किया। सो इसको शब्द प्रमाण भी कहा जाता है, शब्द प्रमाण कि एक। और प्रभुपाद ने अनेक उदाहरण दिए इसके बारे में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आरोह ज्ञान में एक प्रॉब्लम है, आरोह ज्ञान में प्रॉब्लम है कि हम जिन यंत्रों से ये ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम किन यंत्रों से ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम आँख नाक मुंह, है ना, इन सब जननेन्द्रिय इत्यादि, त्वचा इत्यादि से हम ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारी इंद्रियां ये अपूर्ण है, है ना, इनसे कभी भी हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी रहेगी। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम अपने अनुभव के द्वारा कोई, अपने इंद्रियों के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, है ना। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि हर व्यक्ति मरणशील है, हाँ तो वो कैसे जानेगा, वो सबको देखेगा मरते हुए, है ना। तो जब तक वो सबको मरते हुए नहीं देख ले वो ये बात सिद्ध नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति मरणशील है। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति जीवित हो जिससे वो नहीं मिला हो, दिमाग में हमेशा वो शंका बनी रहेगी। अब प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पिता के बारे में जानना चाहे कि मेरा पिता कौन है, तो एक तरीका है कि वो सब लोगों का DNA टेस्ट कराए और अपने से मैच करे, हाँ कि क्या ये मेरा पिता है, नहीं उसको संस्कृत में बोलते हैं नेति। तो जो मायावादी जो लोग होते हैं, जो मायावादी हैं, वो नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके वो बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, तिरस्कार करते हैं सबसे मुख्य वस्तु प्राप्त करने के लिए। सो DNA टेस्ट करा के अपने पिता के बारे में जानना, क्या जाना जा सकता है, हाँ जाना जा सकता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपको अपने पिता के बारे में जानना है तो आप अपनी माता से पूछ सकते हो, है ना, बहुत ही सिंपल है। हाँ सो ये शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण है कि आप अपनी माता से पूछ लो। तो जो सारे शास्त्र हैं ये भी हमारी माता के समान है, और शास्त्रों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। तो ब्रह्मा जी अभी फिलहाल, ब्रह्मा जी जो है अपने जन्म के बाद आरोह पंथ का अवलंबन कर रहे हैं, आरोह जो पथ है वो अंगीकार कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं जानने की ये जगत क्या है, कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या लक्ष्य है, क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो अपने प्रयास से इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने अनेक बार ऐसा प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार ही वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसका हम प्रमाण देख सकते हैं भागवतम के दशम स्कंद में, जहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को अपनी इंद्रियों द्वारा जानने का प्रयास किया, जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ जो है वन में विहार कर रहे थे, तो उनको दही से बना हुआ एक पकवान खाते हुए देख के सारे हाथ सने हुए थे उनके पकवान से, और वो ढूंढ रहे थे हाँ कि कहाँ चलेगी गायें। तो सारे जो ग्वाल बाल थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम बैठो, तुम खाते रहो, मैं गायों को ढूंढ के लेके आता हूँ। सो उनके हाथों पे पकवान लगे हुए हैं, जूठे हाथ, और वो लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं ढूंढने के लिए गायों को। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। हाँ, भगवान का मतलब परम शक्तिशाली, हाँ, जिनकी इच्छा से सब कुछ अपने आप जो है कार्यान्वित हो जाए, पूरा हो जाए। हाँ, ये तो भगवान नहीं लग रहे। तो उन्होंने उनको अपने इंद्रियों से जानने की चेष्टा की। हाँ, सो खैर उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया, तो भगवान कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, तो पीछे से ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो भगवान वापस आए तो देखा ग्वाल वाले भी गायब हैं। हाँ, सो उस समय जब भगवान कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों और बछड़ों का वो विस्तार कर लिया अपने आप को, और एक वर्ष तक वो लीला करते रहे, और जब ब्रह्मा जी वापस आए देखने के लिए कि क्या हाल चाल चल रहा है वृंदावन में, तो उन्होंने देखा कि कुछ भी बदलाव नहीं आया है, बल्कि लोगों का प्रेम और अधिक बढ़ गया है। यहाँ तक कि बलराम जी भी इसको समझ नहीं पाए थे, बलराम जी भी मोहित हो गए थे भगवान कृष्ण की माया के सामने। सो जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने आए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, तो भगवान कृष्ण जो है सारे ग्वाल बाल और बछड़े वहाँ पर थे, और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक एक ग्वाल के पास, एक एक जो उनके साथ गोप थे, एक एक व्यक्ति के पास में इतनी गाय और बछड़े थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, एक एक ग्वाल के पास में। हाँ, तो आप सोच सकते हो और कितने ग्वाल बाल थे, सुप्रभुपाद कह रहे उनकी भी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य गोप थे और एक एक गोप के पास असंख्य गायें और बछड़े थे, तो उनमें से किसी की भी गिनती नहीं की जा सकती, असंभव है। सो जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास आए और नतमस्तक हुए, तो उन्होंने देखा कि जितने भी ग्वाल बाल और गायें बछड़े हैं वो सब विष्णु रूप में बदल गए। हाँ, आप सोचो कि मतलब अरबों खरबों कुछ गिनती नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ भी आप गिन नहीं सकते, कितनी भी प्रयास करके इतने ग्वाल बाल और इतने गायें बछड़े थे, और वो सभी विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गए। तो ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे इतने सारे विष्णु हो सकते हैं, और उनके देखते ही देखते वो सारे विष्णु मूर्तियां भगवान के शरीर में समा गए, और भगवान वहाँ पर अकेले खड़े हुए थे। सो व्हाई डोंट यू कम एंड सिट, ओके, हमें अच्छा लगेगा अगर आप आके हमारे साथ बैठोगे तो। ओके, फाइन। सो बहुत ही ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, और ब्रह्मा जी भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हो सकता है लोग पूरे ब्रह्मांड के कणों को, जितने भी धूल के कण हैं उसको गिन लें, हो सकता है लोग इतना एडवांस हो जाएं कि जितनी बर्फ है इस संसार में, बर्फ जो उसके कण को गिलने, हाँ, जो स्नो फ्लेक्स हैं, जो बर्फ के कण होते हैं उसको हो सकता है वो गिन पाए, हो सकता है सूर्य की किरणों को गिन लें। हाँ, सो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो कि धूल के कणों को गिनना बहुत ही मुश्किल है, हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है बर्फ़ के कणों को गिनना, क्योंकि बर्फ़ के जो कण हैं वो धूल से भी ज़्यादा सूक्ष्म हैं, और बर्फ़ के कण से भी ज़्यादा सूक्ष्म जो हैं वो प्रकाश सूर्य की किरणें हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हो सकता है लोग गिन लें, हाँ, हो सकता है लोगों के पास इतनी शक्ति आ जाए, इतनी नॉलेज आ जाए कि वो धूल को भी, धूल के कणों को गिन लें, वो बर्फ़ के कणों को गिन लें, वो प्रकाश की किरणों को गिन लें, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान की महिमा है, उसको समझ पाना फिर भी असंभव है, उसको समझा नहीं जा सकता। और ब्रह्मा जी एक बार इसी प्रकार द्वारका गए थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो थोड़ा उनके मन में गर्व था, गर्व है ही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि जिस व्यक्ति ने कर दी, तो उसको कई बार मन में आ ही सकता है कि देखो मैंने ये सब सृष्टि किया। तो जब गए तो द्वारपाल को बोला कि जाके बोलो कि ब्रह्मा आए हैं, हाँ। तो भगवान कृष्ण के पास जब द्वारपाल आए और बोला कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो भगवान कृष्ण ने बोला जाके पूछो कौन से ब्रह्मा हैं, हाँ। तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, और जब ब्रह्मा जी को द्वारपाल ने जाकर बताया कि भगवान जो कृष्ण है वो पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा हैं आप, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, क्या और भी ब्रह्मा है? तो उन्होंने बोला, उनको बोलो कि जाकर बताएं कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। तो जब द्वारपाल उनको लेके गए वहाँ पर, और अचानक उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की पूरी सभा जो है ब्रह्माओं से भरी पड़ी थी, हाँ, कोई ब्रह्मा 8 मुखी था, कोई 16 मुखी, कोई 32 मुखी, कोई 1000 सिर थे किसी ब्रह्मा के, किसी ब्रह्मा के 1 करोड़ सिर थे, हाँ। सबसे छोटा जो ब्रह्मा थे, जो सबसे छोटे थे, वो 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मा जी थे। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसे लगा जो हमारे ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुखी, कि जैसे हाथियों के बीच खरगोश की हालत होती है, वैसे हमारे ब्रह्मा जी को महसूस हो रहा था। और वो सारे ब्रह्मा क्या कर रहे थे? वो सारे ब्रह्मा बहुत ही आदरपूर्वक भगवान कृष्ण के चरणों में शीश नवा रहे थे, और भगवान कृष्ण ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, सब ठीक ठाक है? और सब ब्रह्माओं ने एक ही उत्तर दिया कि आपके संरक्षण में सब ठीक ठाक है, है ना। तो ब्रह्मा जी को ये अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत ही नगण्य, बहुत ही तुच्छ जो है पूरी भगवान की सृष्टि में, बहुत ही तुच्छ है वो। सो ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देखो हो सकता है और लोग गिन पाए, लेकिन भगवान की महिमा को कोई भी समझ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा दूसरों को छोड़ो, दूसरों की बात छोड़ दो, हाँ। तो किसी ने ये प्रश्न उठाया कि हो सकता है कि आज मतलब लोग इतनी तेजी से नहीं कर पाए, लेकिन भविष्य में हो सकता है कर पाएंगे, हाँ। तो ब्रह्मा जी ने एक श्लोक बोला उसके ऊपर, पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति तत्प्रपद सिमनी अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने ये श्लोक बोला जो ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है, कि अगर मन की गति से भी तेज, अगर जो है मुनि पुंगवाना, मुनि पुंगव मतलब जो बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुनि भी अगर कोई होगा, और मन की गति से भी अगर वो करोड़ों वर्षों तक, हाँ, कोटि शत वत्सरा, संप्रगम्य, अगर वो करोड़ों वर्षों तक भी अगर वो प्रयास करे भगवान की महिमा को समझने के लिए तो नहीं समझ सकता। और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भौतिक जगत के लोगों की बात छोड़ दो, स्वयं संकर्षण जो है वो सृष्टि के आरंभ से हजारों मुखों से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं का पार नहीं पा पा रहे हूँ, ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान की कितनी असीम लीलाएं हैं। उन्होंने बोला संकर्षण को भी छोड़ दो, स्वयं भगवान कृष्ण नहीं जान सकते कि उनकी कितनी लीलाएं हैं। और भगवान कृष्ण जो हैं वो उद्धव को 11वें स्कंद में ये बात बोल रहे हैं कि देखो उद्धव, मैं खुद भी जान नहीं पाता कि मेरी कितनी महिमा है, तो कोई और इसको कैसे समझ पाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या भगवान को समझने का प्रयास करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल है, असंभव है। सो भगवान कह रहे हैं कि प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्रयास करने की एक विधि है। और वो विधि क्या है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि आप मुझे जानने की कोशिश करो, लेकिन कैसे, एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर उनकी सेवा करो। उनकी सेवा कैसे करनी है, परिप्रश्नेन, उनसे जिज्ञासा करके। सो भगवान को उनके बारे में कुछ जाना जा सकता है, पूरी तरह भगवान को जानना असंभव है, लेकिन भगवान को थोड़ा बहुत जाना जा सकता है एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर। और भगवान ने स्वयं अपने आचरण से बताया है कि भगवान की गुरु की शरण लेना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनी मुनि की शरण ली, और चैतन्य महाप्रभु ने शिला ईश्वरापुरी की शरण ली, और उनके आदेशानुसार भगवान की भक्ति में लगे। सो अगर भगवान को जानने की कुछ भी संभावना है, तो वो एक ही संभावना है कि हम लोग एक गुरु की शरण लें। हाँ, और गुरु का शरण लेना सिर्फ दीक्षा लेना ही नहीं है, दीक्षा तो आरंभ है यात्रा का, दीक्षा तो शुरुआत की हमने कि हमने गुरु की शरण ली, और गुरु की कृपा से सुसज्जित होकर हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान को जानने का प्रयास जो है वो भगवान पर विजय प्राप्त करना नहीं है, भगवान को जानने का प्रयास भी भगवान की सेवा है। उसके पीछे जो कारण है भगवान को जानने का, वो ये है कि जब हम भगवान को जानेंगे अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से हम भगवान को जानेंगे, उतनी ही अच्छी तरह हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम भगवान को इसलिए नहीं जानना चाहते कि हम लोगों को बता सके, देखो मुझे कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है, मुझे कितना ज्ञान है। हम भगवान को जानना चाहते हैं ताकि हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर पाए। सो जिस प्रकार ब्रह्मा जी अभी प्रयास कर रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा जानने के लिए, और बाद में आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी ये समझ जाएंगे कि अपने प्रयास से भगवान को नहीं जाना जा सकता, और इसलिए उन्होंने परंपरा की, भगवान की शरण ग्रहण की। उसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि अपनी इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो आप ये कह सकते हो कि हम इन्हीं इंद्रियों से, तो जब हम गुरु की भी शरण लेते हैं तो इंद्रियां तो वही रहती हैं, इंद्रियां थोड़ी ना बदल जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना है जो दीक्षित हैं जिन्होंने गुरु की शरण ली अभी उनकी इंद्रियां दिव्य हो चुकी हैं, वो इंद्रियां भौतिक ही हैं। तो कैसे जो है हम दीक्षा के द्वार माध्यम से, गुरु की शरण के माध्यम से इन्हीं भौतिक इंद्रियों से भगवान को कुछ समझ सकते हैं। सो हम समझ सकते हैं जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयांति ते, जिससे कि आप मेरे पास आ सकते हो। सो कई लोग, दो धाराएं निकल के आती हैं। एक धारा जो है वो ये कुछ लोगों का मत है कि बहुत प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, उससे हम समझ पाएंगे। और एक मत है कि पूरे भगवान की कृपा पर ही आश्रित होना चाहिए, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये दो प्रचलित जो मत हैं, और इन दोनों मतों का खंडन किया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दो उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी प्रयास से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने उदाहरण दिया एक बंदर के बच्चे का। तो जिस प्रकार बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है, हाँ, माँ का कुछ रोल नहीं है बंदरिया का, बंदर ही जो बच्चा है वो अपनी माँ से पेट से चिपका हुआ है और माँ इधर से उधर छलांगे मार रही है, तो वो बच्चा जो है अपनी माँ को पकड़ा हुआ है, उसने अगर छूट गया तो नीचे गिर जाएगा वो, हाँ। तो पूरा प्रयास जो है वो बंदरिया के बच्चे का ही है, और जो पूरी तरह से कृपा पर आश्रित है, सो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि वो शेर के बच्चे की तरह है। जैसे शेर के बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो क्या करती है, शेरनी उसको अपने जबड़े में दबा लेती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जो शेर का बच्चा होता है वो बिल्कुल शिथिल पड़ा रहता है आराम से, उसको कुछ डर नहीं होता, लेकिन वो अपनी माँ के जबड़े में सुरक्षित महसूस करता है, माँ ही उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ना तो हम बंदरिया के बच्चे हैं और ना ही हम शेर के बच्चे हैं, हम लोग मनुष्य हैं, और हमारी स्थिति है कि हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं। सो हमें प्रयास की भी आवश्यकता है और कृपा की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रयास ही करते रहो, कृपा मत ढूंढो, और ऐसा भी नहीं है कि कृपा पर ही आश्रित रहो, प्रयास मत करो। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि हम लोगों की स्थिति ऐसी है जैसे कुएं में गिरे व्यक्ति की है। सो कृपा क्या है कि गुरु ने जो है उस कुएं में एक रस्सी लटका दी, ज्ञान की रस्सी लटका दी, कृपा की रस्सी लटका दी, और प्रयास क्या है कि हम उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाए, है ना। सो इसमें कृपा भी है और इसमें प्रयास भी है। तो अगर हम प्रयास करेंगे पूरे मन से और प्रयास करते समय हम भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा पर आश्रित रहेंगे, तो अवश्य हम भगवान को कुछ सीमा तक समझ पाएंगे और दूसरे लोगों को भी भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ प्रश्न है कि जब व्यक्ति प्रयास करता है तो वो उसमें कृपा का अनुभव कैसे कर सकता है, वो कैसे समझ सकता है कि मुझे कृपा जो है भगवान कृष्ण की और गुरु की कृपा मुझे मिल रही है, सो वो समझ सकता है, वो अनुभव कर सकता है अगर वो पूरी निष्ठा से गुरु के आदेशों का पालन करें। अगर कोई भी भक्त, कोई शिष्य पूरी निष्ठा से अगर गुरु के आदेशों का पालन करेगा तो अवश्य ही वो भगवान की और गुरु की कृपा का अनुभव कर पाएगा। अगर कोई ये सोचेगा कि गुरु को शायद मेरी स्थिति का पता नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स है, हाँ, गुरु को कुछ और मेरे से पूछकर कुछ मेरे साथ और समय बिताना चाहिए था, हो सकता है उनका उत्तर कुछ और होता, तो ऐसी बात नहीं है। गुरु जो होते हैं वो, क्योंकि भगवान कृष्ण आपके हृदय में भी हैं और गुरु के हृदय में भी हैं, और अगर हम श्रद्धा से अगर हम गुरु से जिज्ञासा करेंगे, गुरु से पूछेंगे, तो भगवान कृष्ण गुरु के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, है ना। सो अगर हम पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से गुरु से जिज्ञासा कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण गुरु के माध्यम से हमें निर्देश दे रहे हैं, है ना। सो हमें उन निर्देशों के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए हमें, और पूरी निष्ठा से हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आप बहुत ही मन में संतोष का अनुभव करेंगे और भक्ति में अनुभव में बहुत तेज़ी से प्रगति करेंगे आप, ठीक है। डिवोटी किस स्तर पे भगवान के दर्शन करना चाहता है? आज ही दर्शन करना चाहता है? कौन सा स्तर है? क्या कनिष्ठ भक्त भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता? करना चाहता है। क्या मध्यम अधिकारी भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता? करना चाहता है। क्या उत्तम अधिकारी भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता? करना चाहता है। लेकिन दर्शन करने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो अलग होता है। कनिष्ठ भक्त जो है वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, उसको अच्छा लगेगा। और जो उत्तम अधिकारी है भगवान के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वो ये अनुभव करता है, वो ये सोचता है कि जब भगवान साक्षात उनके सामने होंगे तो वो भगवान की और भी अच्छे से सेवा कर पाएंगे, है ना। सो भगवान के दर्शन की आकांक्षा तो हरेक भक्त के हरेक स्तर पर बनी रहती है, और बल्कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता है भगवान के दर्शन की इच्छा और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है, है ना, ठीक है। सो प्रश्न है कि क्या जो ब्रह्म संहिता भी उपलब्ध है, क्या उससे कोई बड़ा संस्करण भी उपलब्ध है? हाँ, सो उपलब्ध है, बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन और संस्करण उपलब्ध है ब्रह्म संहिता पर। भक्ति सिद्धांता सरस्वती जो ब्रह्म संहिता है उस पर शिला प्रभुपाद ने टीका नहीं लिखी है, उस पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका लिखी है। प्रभुपाद ने, क्योंकि उनके गुरु ने उस पर टीका लिख चुके थे इंग्लिश में, इसीलिए प्रभुपाद ने उस पर टीका नहीं लिखी है। सो भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के अलावा भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका उपलब्ध है, लेकिन वहाँ वो टीकाएँ पढ़ने से पहले हमें प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़नी होंगी। जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों जो उनके जो लेख हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, उनके ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने का हमें अधिकार तभी मिल पाएगा जब हम श्रील प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ लेंगे। हाँ, तो पहले प्रयास आएगा या पहले कृपा आएगी? सी, जब हम ये कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसका अर्थ है कि हर कार्य भगवान के संरक्षण में हो रहा है, लेकिन भगवान उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, सो जब कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब है उपदृष्टा अनुमंताचा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि हर कार्य मेरे निरीक्षण में हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपने हाथ से पत्ता हिला रहे हैं। हाँ, सो प्रश्न ये है कि पहले कृपा आती है कि पहले प्रयास आता है? तो ये एक्चुअली चिकन एग वो कंक्लूजन है, चिकन और एग का, कि पहले मुर्गा आया था या पहले अंडा आया था, है ना। सो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास होगा, पहले एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पहले कृपा आएगी। क्यों आएगी? कि कोई भक्त आप विशेष रूप से दयालु होकर आप पर आपको भगवान की आपसे भगवान के प्रति कोई सेवा ले लेगा, जिसको अज्ञात सुकृति कहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो भक्त है आपसे भगवान की कोई सेवा ले लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भक्त आपके पास आया हाँ किसी व्यक्ति के पास गया और उसको उसने प्रभुपाद की एक पुस्तक दिखाई, तो उन्होंने बोला आप प्लीज़ ये पुस्तक आप लीजिए खरीदिए। तो उसने वो पुस्तक हाथ में पकड़ी, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, आप एक बार पकड़िए तो सही। तो उसने वो व्यक्ति ने पुस्तक हाथ में पकड़ी तो बस उसको अज्ञात स्वीकृति मिल गई उसको। अच्छा ये फ़ोटो कैसी है? फ़ोटो बहुत अच्छी है, अज्ञात स्वीकृति मिल गई। भक्त जाते हैं लोगों को प्रसाद देते हैं, हाँ कोई मिश्री दिया, फ्रूट दिया, कुछ भी प्रसाद दिया। हाँ सो कोई व्यक्ति सामने से आपको बोला हरे कृष्णा, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? हरे कृष्णा, अज्ञात स्वीकृति उसको मिल गई है ना। सो जो सबसे अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो उसके जो मूल है, और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अज्ञात स्वीकृति जब तक नहीं होगी, जब तक कोई पुण्य नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते। तो भक्त ऐसी कृपा करते हैं और जाके लोगों को अज्ञात स्वीकृति बांटते हैं, है ना। सो अगर देखा जाए तो भक्त इतने महान हैं कि प्रयास करने के योग्य भी हम लोगों को भक्ति बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले प्रयास आता है कि पहले कृपा आती है ना। हाँ 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 तो सो प्रश्न है कि भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्म संहिता पर टीका लिखी, हाँ तो प्रभुपाद ने टीका नहीं लिखी उस पुस्तक के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य जो हैं वो पुस्तकें लिखने में लगे हुए हैं, तो उसका क्या कारण है? तो वो ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं लिख रहे जो प्रभुपाद ने ऑलरेडी इसका अनुवाद और तात्पर्य दिया हुआ है। वो प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित और ग्रंथ लिख रहे हैं। हाँ ऐसा कोई भी इस्कॉन में ऐसा कोई भी डिवोटी नहीं है जो प्रभुपाद के जो जैसे भागवतम पे कोई टीका दे रहा हो, ऐसा कोई नहीं है, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवद गीता पर टीका दे रहा हो। जितने भी भक्त पुस्तकें लिखने में अभी लगे हुए हैं, हाँ वो सब प्रभुपाद की शिक्षाओं को और अच्छे से किस प्रकार समझा जाए इस उद्देश्य से जो है पुस्तकें लिख रहे हैं। जिस प्रकार भागवतम सिर्फ चार ही श्लोक हैं भागवतम के, चतुश्लोकी भागवतम जिसे कहते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको 18,000 श्लोकों में जो है 18,000 श्लोक यूज़ किए उन चार श्लोकों को समझाने के लिए। इस प्रकार प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से जो है समझाई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी और अच्छे से समझाने के लिए जो है प्रभुपाद के शिष्य और दूसरे भक्त प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित जो है ज्ञान पर ज्ञान को यूज़ करके और पुस्तकें लिख रहे हैं, ताकि उन पुस्तकों को पढ़ के प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बढ़े, प्रभुपाद के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़े, लोग प्रेरित हों प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए, है ना। तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए, जो लिख सकता है उसको लिखना चाहिए, ठीक है।